एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई मतलब दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
बिल्कुल, एक ऐसी किताब जिसने विज्ञान की पूरी दिशा ही मोड़ दी।
हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन की जबरदस्त किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की,
यानी प्रजातियों की उत्पत्ति पर। ये आई थी 1859 में, लेकिन इसकी बातें आज भी आप देखिए हर तरफ सुनाई देती हैं।
सही कहा, ये कोई पुरानी धूल खाती किताब नहीं है। सोचिए जरा, आज जो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं या नई फसलें
या पर्यावरण बचाने की कोशिशें,
हाँ, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं डार्विन के विचार हैं, यहां तक कि टेक्नोलॉजी में भी। तो चलिए आज इसी महान रचना की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि डार्विन ने ऐसा क्या कहा जो आज भी इतना जरूरी है। हाँ, तो पहले जाना चार्ल्स डार्विन के बारे में जान लें। 1809 से 1882 तक अंग्रेज प्रकृतिवादी, भूविज्ञानी, जीव विज्ञानी, कई पहचानें थी उनकी।
लेकिन उनकी कहानी भी तो थोड़ी अलग है ना? सुना है वो पहले डॉक्टर या शायद पादरी बनने वाले थे।
हाँ हाँ बिल्कुल, एक अच्छे अमीर परिवार से थे। एडिनबर्ग में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, फिर कैम्ब्रिज में धर्मशास्त्र की, मगर दिल लगता था प्रकृति में, पत्थर पौधे कीड़े मकौड़े जमा करने में।
और फिर वो समुद्री यात्रा HMS बीगल वाली।
हाँ, वो तो जैसे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 1831 से 1836, पूरे 5 साल। सोचिए उस जमाने में 5 साल दुनिया घूमना, दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ नहीं गए।
और वहीं से उनके विचारों की नींव पड़ी।
बिल्कुल, हजारों नमूने जमा किए, इतनी बारीकियां नोट की, वही सब अवलोकन बाद में उनकी थ्योरी का आधार बने।
तो ओरिजिन लिखने से पहले वो गुमनाम नहीं थे, मतलब वैज्ञानिक जगत में जाने जाते थे।
अरे हाँ बिल्कुल, वो एक सम्मानित भूविज्ञानी और प्रकृतिवादी बन चुके थे। द वॉयेज ऑफ द बीगल किताब लिख चुके थे, और एक समुद्री जीव होता है बार्नेकल, उस पर तो उन्होंने 8 साल तक काम किया था।
8 साल, कमाल है।
उनकी असली ताकत थी चीजों को बहुत गौर से देखना, और फिर अलग अलग फील्ड्स की जानकारी, जियोलॉजी, फॉसिल्स, जानवरों का फैलाव, यहाँ तक कि आप सोचिए कबूतर पालने वालों के तरीके, इन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बना लेना।
अच्छा,
20 साल से ज्यादा सबूत जुटाते रहे हो, और फिर थॉमस माल्थस का एक निबंध था जनसंख्या पर, उससे उन्हें वो अस्तित्व के लिए संघर्ष का आइडिया मिला, वो उनके सिद्धांत का एक जरूरी हिस्सा बना।
तो ये किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज,
हाँ,
आखिर कहती क्या है? इसका जो मूल विचार है जिसने इतनी हलचल मचाई, वो क्या था?
देखिए, उस समय ज्यादातर लोग क्या मानते थे कि भाई हर जीव, हर पौधा जैसा भगवान ने बना दिया वैसा ही है, हमेशा से। प्रजातियां फिक्स्ड हैं, बदलती नहीं।
हाँ, ये तो आम धारणा थी।
डार्विन ने इसी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर ये जो इतनी तरह के जीव जंतु दिखते हैं, ये विविधता एक धीमी लगातार चलने वाली प्रक्रिया से आई है।
और वो प्रक्रिया क्या नाम दिया उसे?
उन्होंने उसे कहा प्राकृतिक चयन, यानी नेचुरल सिलेक्शन, या एक और टर्म इस्तेमाल किया, परिवर्तन के साथ अवतरण,
डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन।
मतलब
ये कि सभी जीव अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से धीरे धीरे बदलते हुए आए हैं, विकसित हुए हैं। कोई भी आबादी हो, उसके जीवों में थोड़े बहुत फर्क तो होते ही हैं। इसे कहते हैं भिन्नता या वेरिएशन।
हाँ, जैसे हम सब एक जैसे नहीं होते, रंग रूप कद।
बिल्कुल, अब सोचिए अगर किसी जीव में कोई ऐसा छोटा सा गुण आ जाए जो उसे अपने माहौल में जिंदा रहने में या ज्यादा बच्चे पैदा करने में जरा सी भी मदद करे,
तो क्या होगा?
तो उसके वो गुण अगली पीढ़ी में जाने की संभावना ज्यादा होगी।
एकदम सही, और पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों में ये छोटे छोटे फायदेमंद बदलाव जमा होते जाते हैं, और जो गुण कम फायदेमंद हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं।
अच्छा,
इससे न सिर्फ जीव अपने माहौल के हिसाब से बेहतर ढलते हैं, बल्कि धीरे धीरे नई प्रजातियां भी बन सकती हैं।
ये तो वाकई बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार था उस समय के हिसाब से। डार्विन ने इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे होगा? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए लिखी गई थी?
नहीं, उन्होंने इसे वैज्ञानिकों और जो पढ़े लिखे आम लोग थे, दोनों के लिए लिखा। वो जानते थे कि ये विचार कितना विस्फोटक है, धार्मिक मान्यताओं को, उस समय की वैज्ञानिक सोच को, सबको हिला देगा।
तो उन्होंने सावधानी बरती होगी।
बहुत, उन्होंने बहुत ध्यान से ढेर सारे सबूतों के साथ अपनी बात रखी, और शुरुआत भी बड़ी होशियारी से की, पालतू जानवरों से।
पालतू जानवरों से कैसे?
हाँ, पहले अध्याय में ही उन्होंने दिखाया कि कैसे हम इंसान हजारों सालों से कृत्रिम चयन करते आ रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
जैसे किसान अच्छे बीज चुनते हैं,
या ब्रीडर कुत्तों की नई नस्लें बनाते हैं,
बिल्कुल,
या कबूतर पालने वाले खास रंग या परों वाले कबूतर चुनकर नई नई किस्में बना लेते हैं। डार्विन ने कहा, देखिए, प्रजातियों में बदलाव हो सकता है, भिन्नता होती है और चयन काम करता है।
अच्छा, ये तो परिचित उदाहरण था।
हाँ, इससे पाठक कम से कम इस आइडिया के लिए तैयार हो गया कि बदलाव संभव है। फिर उन्होंने जीवाश्मों से, जानवरों के भौगोलिक वितरण से, भ्रूण के विकास से, शरीर की बनावट से, न जाने कितने क्षेत्रों से सबूत पेश किए।
चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब के जो मुख्य हिस्से हैं, अध्याय हैं, उनकी बात करते हैं। पहले कुछ अध्यायों में तो वो जैसे जमीन तैयार कर रहे थे ना। अध्याय एक, जैसा हमने कहा, पालतूकरण के तहत भिन्नता, कुत्ते, भेड़े, पौधे, कबूतर, कैसे इंसान ने चयन करके विविधता पैदा की, ये दिखाता है कि भिन्नता असली है, विरासत में मिलती है और जमा हो सकती है।
और फिर अध्याय दो में जंगली जीवों की बात। हाँ, प्रकृति के तहत भिन्नता, कि भई जंगलों में भी जीवों में फर्क होते हैं, और ये जो हम किस्म और प्रजाति कहते हैं, इनके बीच कोई साफ दीवार नहीं है। किस्में असल में बनती हुई प्रजातियां हैं, प्रकृति खुद ही कच्चा माल दे रही है विकास के लिए।
तो ये भिन्नता हो गई कच्चा माल, पर वो ताकत कौन सी है जो इसे तराशती है, वो विचार कहां से आया?
वो है अध्याय तीन का मुद्दा, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन ने माल्थस के जनसंख्या वाले निबंध से प्रेरणा ली, सोचा कि जीव जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं उतने जिंदा रह नहीं पाते।
क्यों?
क्योंकि खाने पीने रहने की जगह सीमित है।
हाँ,
और शिकारी भी हैं, बीमारियां हैं, मौसम की मार है, और तो और अपनी ही जाति के दूसरे जीवों से भी मुकाबला है। ये लगातार चलने वाला संघर्ष ही वो दबाव बनाता है जो बदलाव लाता है,
और इसी संघर्ष से निकलता है प्राकृतिक चयन, जो अध्याय चार का मुख्य विषय है।
एकदम सही, ये उनके सिद्धांत का दिल है। प्रकृति बिना किसी इरादे के उन जीवों को चुन लेती है जिनके गुण माहौल के हिसाब से थोड़े बेहतर होते हैं।
चुन लेती है मतलब कोई सोच समझ कर नहीं?
नहीं, नहीं, ये बस नतीजा है। जिनके गुण ज्यादा फायदेमंद, उनके बचने और बच्चे पैदा करने के मौके ज्यादा, तो अगली पीढ़ी में वो गुण ज्यादा दिखेंगे। यही पर उन्होंने यौन चयन, सेक्सुअल सिलेक्शन का भी जिक्र किया।
यौन चयन वो क्या है?
कुछ गुण ऐसे होते हैं जो शायद जिंदा रहने में सीधे मदद ना करें, पर साथी को आकर्षित करने में मदद करते हैं। जैसे मोर की खूबसूरत पूंछ, वो भी विकास का एक तरीका है।
अच्छा।
और धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव जमा होकर बड़े अनुकूलन, एडेप्टेशंस, और फिर नई प्रजातियां बनाते हैं। यही वो मशहूर जीवन वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ का आइडिया लाते हैं, कि सारा जीवन एक ही जड़ से फैली शाखाओं जैसा है।
लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये भिन्नता, ये फर्क आते कहां से हैं? क्या डार्विन ये जानते थे?
अध्याय पांच इसी बारे में है क्या? हाँ, भिन्नता के नियम। उन्होंने कोशिश की समझने की, सोचा कि शायद पर्यावरण का असर होता है, या अंगों का इस्तेमाल करने या ना करने से फर्क पड़ता है, इस तरह की बातें। हालांकि जेनेटिक्स की जानकारी तो थी नहीं उस वक्त, तो उनकी समझ थोड़ी अधूरी थी। पर मेन बात यह थी कि भिन्नता होती है, और यही चयन के लिए जरूरी है।
मुझे लगता है इसके बाद डार्विन ने जरूर ये सोचा होगा कि लोग उनके सिद्धांत पर क्या सवाल उठा सकते हैं, आपत्तियां क्या होंगी।
बिल्कुल, और ये उनकी ईमानदारी थी कि उन्होंने अध्याय 6 से 9 तक इन्हीं मुश्किलों और आपत्तियों पर बात की। उन्होंने खुद ही अपनी थ्योरी पर सवाल उठाए।
अच्छा, जैसे कि?
जैसे अध्याय 6 में, भई अगर प्रजातियां धीरे धीरे बदली तो बीच की कड़ी वाले जीवाश्म क्यों नहीं मिलते, ट्रांजिशनल फॉर्म्स। उनका जवाब था, जीवाश्म रिकॉर्ड ही बहुत अधूरा है, पूरी कहानी नहीं बताता।
और आंख जैसी जटिल चीज, वो कैसे धीरे धीरे बन सकती है?
हाँ, ये भी बड़ा सवाल था। उनका तर्क था कि ये छोटे छोटे फायदेमंद कदमों से हुआ होगा, हर कदम अपने आप में उपयोगी रहा होगा। फिर सहज व्यवहार, इंस्टिंक्ट कैसे विकसित हुआ, या चींटियों और मधुमक्खियों में वो रानियां और वर्कर जो बच्चे पैदा नहीं करते, वो कैसे बने?
हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है।
अध्याय 7 तो पूरा इंस्टिंक्ट यानी सहज बोध पर ही है। वो बताते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता बनाना, या कुछ चींटियों का दूसरी चींटियों को गुलाम बनाना, ये जटिल व्यवहार भी प्राकृतिक चयन से आ सकते हैं।
फिर अध्याय 8 में संकरता की बात, जैसे घोड़े और गधी से खच्चर पैदा होता है, पर खच्चर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता।
हाँ, कि अलग अलग प्रजातियों को मिलाने पर अक्सर बांझ संतानें क्यों होती हैं, ये असल में प्रजातियों के अलग हो जाने का एक नतीजा है, एक तरह की बाधा।
और अध्याय 9 में फिर से जीवाश्म रिकॉर्ड की कमी पर जोर।
हाँ, विस्तार से बताया कि ये रिकॉर्ड कितना अधूरा है, जैसे किसी किताब के कुछ फटे पुराने पन्ने ही मिले हों।
वाह, मतलब उन्होंने संभावित आलोचनाओं का पहले ही जवाब देने की पूरी कोशिश की। लेकिन सिर्फ जवाब देना काफी नहीं था, उन्हें पॉजिटिव सबूत भी तो देने थे।
हाँ, और अगले अध्याय 10 से 13 सबूतों से ही भरे पड़े हैं। अध्याय 10, भूवैज्ञानिक अनुक्रम। जीवाश्म रिकॉर्ड अधूरा है, पर जो है वो विकास का पैटर्न दिखाता है। पुरानी चट्टानों में सरल जीव नई चट्टानों में ज्यादा जटिल, और अक्सर विलुप्त जीव उसी इलाके के आज के जीवों से मिलते जुलते हैं।
और फिर वो भूगोल वाला तर्क, जानवरों का वितरण।
हाँ, अध्याय 11 और 12, भौगोलिक वितरण यानी बायोजोग्राफी। ये बहुत मजबूत सबूत था। दुनिया में जीव कहाँ कहाँ मिलते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ का मौसम अच्छा है, बल्कि उनके पुरखे कहाँ से आए, इस पर निर्भर करता है।
जैसे वो गैलापागोस वाले फिंच।
बिल्कुल, द्वीपों पर अक्सर अनोखे जीव मिलते हैं, जो पास के महाद्वीप के जीवों से मिलते जुलते तो हैं, पर उनमें कुछ खास बदलाव आ गए होते हैं। भौगोलिक बाधाएं जीवों को अलग अलग कर देती हैं।
और अध्याय 13 में क्या था?
उसमें कई तरह के सबूतों को एक साथ रखा। आपसी समानताएं, जैसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हम जीवों को जैसे ग्रुप में रखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास। ये असल में उनके विकासवादी रिश्ते यानी फैमिली ट्री को दिखाता है। आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, समजात अंग, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। सोचिए, चमगादड़ का पंख, वेल का तैरने वाला फ्लिपर और इंसान का हाथ, काम कितने अलग हैं, पर अंदर हड्डियों की बनावट देखो तो एक जैसी है। ये बताता है कि इनके पूर्वज एक थे।
हाँ, ये तो स्कूल में भी पढ़ा था।
फिर भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, मछली, मुर्गी, कछुआ, इंसान, इन सब के शुरुआती भ्रूण इतने मिलते जुलते होते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाए। ये भी साझे पूर्वज की निशानी है। और अवशेषी अंग, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, जैसे कुछ सांपों में पैरों के छोटे निशान या वेल में कमर की हड्डी का अवशेष, ये उन अंगों के बेकार बचे हुए हिस्से हैं जो उनके पूर्वजों में काम आते थे।
ये तो वाकई सबूतों का एक तरह से पहाड़ ही खड़ा कर दिया उन्होंने।
और फिर अंत में अध्याय 14 में निष्कर्ष। हाँ, उसमें वो सारी बातें दोहराते हैं, सबूतों को समेटते हैं और अपनी थ्योरी की व्याख्या करने की ताकत पर मतलब एक तरह का विस्मय जताते हैं। और फिर वो किताब की सबसे मशहूर लाइनों में से एक आती है, जीवन के इस दृष्टिकोण में एक गंभीरता है।
There is grandeur in this view of life.
इस पूरी किताब और चर्चा से अगर कुछ बड़े संदेश या थीम निकालने हो तो क्या होंगे? पहला तो शायद ये कि हम सब मतलब सारा जीवन आपस में जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, साझा पूर्वज से एकता, मेरे हिसाब से ये सबसे गहरा संदेश है। पेड़, चींटी, हाथी, इंसान, हम सब एक ही महान जीवन वृक्ष की अलग अलग टहनियां हैं।
इसने इंसान को प्रकृति के केंद्र से हटाकर उसका एक हिस्सा बना दिया।
हाँ, ये सोचें तो बड़ी विनम्रता आती है ना, कि हम कोई खास अलग नहीं, इसी बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है, गहन समय में क्रमिक परिवर्तन। ये जो जीवन की जटिलता और विविधता हम देखते हैं, ये रातों रात नहीं बनी, लाखों करोड़ों साल लगे हैं छोटे छोटे लगातार होने वाले बदलावों से।
ये हमारे आज के इंस्टेंट जमाने में सोचने वाली बात है, धैर्य और सतत प्रक्रिया।
तीसरा, प्राकृतिक चयन की रचनात्मक शक्ति। ये कोई अंधी या बेकार की प्रक्रिया नहीं है, पर्यावरण लगातार एक तरह से छान रहा है, चुन रहा है कि कौन से गुण आगे जाएंगे। ये बिना किसी डिजाइनर के डिजाइन जैसा भ्रम पैदा करती है, और इसका इंजन है अस्तित्व के लिए संघर्ष।
इसने निश्चित रूप से मानव विशिष्टता के विचार को चुनौती दी होगी। भले ही डार्विन ने इस किताब में सीधे इंसानों पर फोकस नहीं किया, पर इशारा तो साफ था, है ना?
हाँ बिल्कुल, ये कि इंसान भी बाकी जीवों की तरह इन्हीं प्राकृतिक नियमों से विकसित हुआ है, ये उस समय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी।
और आखिरी बात, ये किताब वैज्ञानिक पद्धति का एक शानदार उदाहरण है। सिर्फ कल्पना
नहीं,
बल्कि ध्यान से देखना, अवलोकन करना, सवाल पूछना, परिकल्पना बनाना और फिर अलग अलग स्रोतों से ढेर सारे सबूत इकट्ठा करना, तर्क और धैर्य का मेल। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या रूपक हैं जो सचमुच याद रह जाते हैं, जैसे वो जीवन वृक्ष वाली बात आपने कही।
हाँ, जीवन वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ। ये दिखाता है कि विकास एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक पेड़ जैसा है जिसकी कई शाखाएं हैं, और बहुत सी शाखाएं टूटकर गिर भी गईं, यानी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। हम आज जो देख रहे हैं वो उस विशाल वृक्ष का सिर्फ वो हिस्सा है जो बच गया। ये साझा वंश और विलुप्ति दोनों दिखाता है।
और वो आखिरी पंक्ति, जीवन के इस दृष्टिकोण में एक भव्यता है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या डार्विन दुखी थे इस विचार से?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो इस बात पर हैरान थे, विस्मित थे कि कैसे इतने सरल नियमों से, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, जीवन की इतनी अद्भुत विविधता और जटिलता पैदा हो सकती है। इसमें एक सुंदरता है, एक अचरज है, निराशा नहीं।
एक और मुहावरा जो अक्सर डार्विन से जोड़ा जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता। हालांकि शायद ये शब्द उनके नहीं थे।
हाँ, ये शब्द हर्बर्ट स्पेंसर के थे, पर विचार डार्विन के सिद्धांत से ही निकला। लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर या सबसे होशियार होना जरूरी नहीं है।
तो फिर क्या मतलब है?
मतलब है वो जो अपने मौजूदा पर्यावरण में सबसे बेहतर फिट होता हो, सबसे अच्छी तरह अनुकूलित हो, एडेप्टेड हो। जो माहौल के हिसाब से सबसे सही बैठेगा, वही ज्यादा संतानें छोड़ेगा, उसके गुण आगे बढ़ेंगे।
और एक और बात आपने पहले कही थी, प्राकृतिक चयन केवल छोटे क्रमिक बदलावों का लाभ उठाकर कार्य करता है, वो कभी अचानक छलांग नहीं लगा सकता।
ये क्रमिकता पर जोर देता है कि जटिल चीजें जैसे आंख या पक्षी का पंख एकदम से जादू की तरह नहीं बन गई। वो बहुत सारे छोटे छोटे फायदेमंद बदलावों के जमा होने का नतीजा है। हर छोटा कदम अपने आप में उपयोगी रहा होगा।
ठीक है, ये इतिहास और सिद्धांत तो बहुत दिलचस्प है, पर आज के जमाने में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ बायोलॉजी के छात्रों या वैज्ञानिकों के लिए है?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चिकित्सा को ही देख लीजिए, ये जो एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं।
हाँ, सुपरबग्स।
वो क्या है? बैक्टीरिया में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित हो रहा है। ये साक्षात प्राकृतिक चयन है, हमारी आंखों के सामने।
फ्लू या कोविड जैसे वायरस हर साल क्यों बदलते हैं? हमें नए टीके क्यों चाहिए? विकासवाद।
अच्छा,
यहाँ तक कि जो आजकल लाइफस्टाइल बीमारियां कहते हैं, मधुमेह, दिल की बीमारियां, कुछ हद तक ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे शरीर और जीन उस माहौल के लिए बने थे जिसमें इंसान लाखों साल रहा, न कि आज के बैठे बैठे खाने वाले माहौल के लिए। एक तरह का मिसमैच है।
और खेती किसानी में, वहां तो शायद हम अनजाने में डार्विन के सिद्धांत इस्तेमाल करते आए हैं। बिल्कुल, कृत्रिम चयन तो यही है। हजारों साल से इंसान अच्छी नस्ल के जानवर और ज्यादा पैदावार वाली फसलें चुनता आया है। आज भी जब कीड़ों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध आ जाता है, या हमें बदलती जलवायु के लिए नई ज्यादा सहनशील फसलें बनानी होती हैं, तो विकासवादी सिद्धांत ही काम आते हैं।
पर्यावरण बचाने में, संरक्षण में भी तो इसका रोल होगा।
बहुत बड़ा रोल। किसी प्रजाति में आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि वही विविधता उसे बदलते माहौल में नई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अगर सब एक जैसे होंगे तो एक ही झटके में खत्म हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का असर क्या होगा, कौन सी प्रजातियां ज्यादा खतरे में हैं, ये समझने में भी विकासवाद मदद करता है।
और टेक्नोलॉजी में भी आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैंने जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में सुना है।
हाँ, कंप्यूटर विज्ञान में जेनेटिक एल्गोरिदम मुश्किल समस्याओं के हल ढूंढने के लिए विकास की प्रक्रिया की नकल करते हैं। वो फिटेस्ट समाधान को चुनते हैं, उसमें थोड़े बदलाव करते हैं, फिर चुनते हैं। कमाल की चीज़ है। और बायोमिमिक्री, प्रकृति के डिज़ाइन से सीखना, जैसे शार्क स्किन से स्विमसूट बनाना या कमल के पत्ते से सेल्फ क्लीनिंग सतहें।
मनोविज्ञान में भी तो आजकल विकासवादी मनोविज्ञान की बात होती है।
हाँ, वो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बहुत से व्यवहार, हमारी भावनाएं, हमारे सामाजिक तरीके जैसे डर, गुस्सा, सहयोग, जलन, ये हमारे विकास के इतिहास में कैसे फायदेमंद रहे होंगे।
और शायद व्यक्तिगत स्तर पर भी हम इससे कुछ सीख सकते हैं, जैसे बदलाव को स्वीकार करना या अनुकूलन क्षमता का महत्व।
निश्चित रूप से, ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और ये भी कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं, हम जीवन के एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं। शायद ये हमें प्रकृति के प्रति ज्यादा सम्मान और जुड़ाव महसूस कराता है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो एक बात सबसे ज्यादा खास रही, वो है डार्विन की वैज्ञानिक ईमानदारी। कैसे उन्होंने खुद ही मुश्किल सवाल उठाए और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश की। ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ जवाब देना नहीं, सही सवाल पूछना भी है। और वो पालतू जानवरों वाला उदाहरण कितना सरल पर कितना प्रभावी तरीका था अपनी बात शुरू करने का।
हाँ, और मेरे लिए जो सबसे गहरा विचार है वो है साझा वंश का। ये सोचना कि हम सब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि बैक्टीरिया कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाएं तो एक ही जीवन से जुड़े हैं, ये एक जबरदस्त जुड़ाव का एहसास देता है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कितना सरल सा आइडिया है, पर जीवन की इतनी ज्यादा विविधता और जटिलता की व्याख्या कर देता है। ये किताब सिर्फ बायोलॉजी की किताब नहीं है, ये तर्क, अवलोकन और धैर्य की शक्ति का प्रमाण है। इसने वाकई दुनिया और उसमें हमारे स्थान को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया।
सच में एक ऐसा विचार जिसने न सिर्फ विज्ञान बल्कि हमारी पूरी सोच को एक नई दिशा दी और ये सोचने पे मजबूर करता है कि आज विज्ञान और ज्ञान के किन क्षेत्रों में ऐसे ही बीज पड़ रहे होंगे जो भविष्य में हमारी समझ को फिर से बदल देंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है एकत्र फाउंडेशन द्वारा।